लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग चार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शोभाराम की पत्नी का नाम पद्मा देवी था। पद्मा देवी जैसी सुंदरी थी वैसी ही विदुषी स्त्री थी। पंजाब से उसने बीए पास किया था और हिंदी में प्रभाकर परीक्षा भी दी थी। वो बहुत खुशमिजाज, फुर्तीली और सुघड़ गृहिणी थी। उसे संगीत का भी शौक था। एक संगीत शिक्षक उसे सितार सिखाने आता था। विवाह हुए अब 5वां साल बीत रहा था, परंतु अभी कोई संतान नहीं हुई थी। परंतु इस ओर उसका कोई ध्यान भी न था, न शोभाराम ही की इधर प्रवृत्ति थी। उसका कद लंबा, शरीर शरहरा और रंग कदली स्तंभ के समान गोरा था। आंखें बड़ी बड़ी, होठ पतले और दांतों की बत्ती सी अतिशय सुंदर सुडौल थी। आयु उसकी अभी 26 ही बरस की थी। उसका स्वस्थ भरा हुआ लचकदार शरीर ऐसा था कि जब वो चलती थी तो प्रतीत होता था कि यौवन छलक रहा हो। 5 बज चुके थे, परंतु शोभाराम अभी तक भी दफ्तर से नहीं लौटे थे। जुगनू काफी देर आरामदेह पलंग पर पैर पसार कर सो चुका था। अब वो एक सोफे पर बैठा सिगरेट पी और दीवारों पर लगी तस्वीरें देख रहा था। पद्मा 3-4 मासिक पत्रिकाओं को लेकर वहां आई। मासिक पत्र उसके सामने टेबल पर रखकर उसने कहा, उनके आने में तो बहुत देर हो रही है, आप चाय पी लीजिए। पद्मा देवी को देखकर जुगनू की आंखें चकाचौंध हो गईं। वो सिगरेट फेंककर एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। ऐसा रूप उसने कभी देखा न था। ऐसा निसंकोच व्यवहार उसके लिए सर्वथा अनभ्यस्त था। पद्मा को देखकर वो एक प्रकार से घबरा गया। बड़ी कठिनाई से उसने केवल इतना ही कहा, नहीं अभी ऐसी जल्दी नहीं है, भाई साहब को आ जाने दीजिए, वो तो कभी कभी बड़ी देर में आते हैं, तो क्या हरज है, आ जाने दीजिए। पद्मा ने एक नज़र जुगनू को देखा। वो स्वस्थ तरुण तो था, पर उसके संकोच और व्यवहार में कुछ ऐसा दैन्य था जो पद्मा को कुछ असाधारण सा लगा, पर उसने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। घर में उसके पति के मित्र आते ही रहते थे और बहुधा उसे अकेले ही उनका आतिथ्य करना पड़ता था। उसने अधिक आग्रह नहीं किया, वो चली आई। परंतु और 1 घंटा बीत गया पर शोभाराम अभी तक नहीं आए। तब पद्मा देवी चाय और नाश्ता लेकर फिर जुगनू के पास गई और ट्रे टेबल पर रखकर कहा, पता नहीं वे कब आए, आप चाय पी लीजिए और मन हो तो तनिक टहलाइए, खाना 9 बजे तैयार हो जाएगा। जुगनू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वास्तव में वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे अवसरों पर कैसा शिष्टाचार प्रदर्शित करना चाहिए। वो चुपचाप संकोच भरे नेत्रों से एक बार पद्मा की ओर देखकर चुप रह गया। पद्मा देवी चली गई। जुगनू ने चाय पीकर फिर सिगरेट जलाई। पद्मा की मूर्ति इस समय उसके मानस नेत्रों में घूम रही थी। वो अपने भूत भविष्य पर भी विचार कर रहा था, परंतु उसे सबसे बड़ा भय इस बात का था कि कहीं उसका भंडा फोड़ न हो जाए और वो भंगी है ये प्रकट न हो जाए। अचानक उसे स्मरण हो आया, पद्मा ने कहा था कि वो जरा टहल आए। वो उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर जाने की उसने पद्मा को सूचना भी नहीं दी। अब वो स्वच्छ खद्दर के कुर्ते और पायजामे में एक सभ्य शिष्ट पुरुष दिख रहा था, परंतु जूता उसका बहुत गंदा और पुराना था। उसकी जेब में केवल 3 रुपये थे, कुछ रेजगारी भी थी। वो घूमता हुआ बाजार तक चला आया और एक सस्ता सा जूता खरीद लिया। पुराना जूता उसने वहीं फेंक दिया। बहुत देर तक वो इधर उधर घूमता रहा। रह रहकर उसका अपना गांव का घर, वहां की गंदगी, चारों ओर घूमते हुए सुअर और उनके बीच खेलते रोते उसके भाई भतीजे उसकी आंखों में घूमते, फिर सबके ऊपर पद्मा की मोहनी मूर्ति, शोभाराम का सभ्य शिष्ट घर और उस घर में इस प्रकार आत्मीय की भांति व्यवहार उसकी चेतना को आहत कर रहे थे। सोचते सोचते कभी उसका कलेजा धड़कने लगता, कभी वो घबरा उठता, कभी उसका मन कहता, साहस कर और देख भाग्य कहाँ ले जाता है। घूमता हुआ वो फिर लाल किले के सामने के मैदान में आ गया। हरी हरी घास पर वो बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने चित्त को स्वस्थ किया। बैठे बैठे उसने सिगरेट का पूरा पैकेट फूंक डाला। चारों ओर बिजली की बत्तियां जगमगा रही थीं। इधर उधर नरनारी आ जा रहे थे। हठात उसके मन में धारणा हुई कि क्या ये भी संभव है कि उसे पद्मा जैसी पत्नी मिल जाए, शोभाराम के जैसा उसका घर हो और वो उसी तरह रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करे जैसा शोभाराम करता है। उसकी चेतना में एक प्रबल आकांक्षा ने चोट करनी आरंभ कर दी। अब साहस और स्थिरता उसके मन में आ रही थी। वो कह रहा था, अब तो नाव नदी में डाल दी गई है, इसे बहने दिया जाए। कौन यहां उसे पहचानने आएगा और कौन उसे भंगी कहेगा? परंतु स्वयं उसका मन ही उसे भंगी कह रहा था। उसने एक झटका देकर अपने मन को रोका। उसके मुंह से शब्द निकले, कौन कौन मुझे भंगी कहता है? मैं हूं मुंशी जगन प्रसाद। वो उठा और घर की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।